السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے گفتگو ہوگی اسلامک اسٹیٹ یا داعش، اس کے ہاتھوں انٹرنیٹ کا استعمال، اور امریکہ کے بقول وہ اب بھی بھرتیوں کے معاملے میں اور لوگوں کو ریڈیکلائز کرنے میں یا انتہا پسندی کے فروغ میں اب بھی امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دوسری جانب ہم جائزہ لیں گے کہ حلب میں داعش کے مضبوط ٹھکانوں کے خلاف بھاری بمباری کی گئی ہے اور ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ گفتگو ہوگی طالبان، ان کی انسرجنسی پہ، ایک تو یہ کہ ڈسٹرکٹ ہیلمند اس پہ ان کے دوبارہ قبضے کی اطلاعات مل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان کے ایک وفد نے چائنا کا دورہ کیا ہے۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ بات ہوگی، جو گزشتہ روز ٹیلی فون لائنز میں پرابلمز کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا جو اظہار رائے کی آزادی کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں پاکستان میں منظور ہونے والے متنازع سائبر کرائم بل کے اوپر۔ اور اگلا سیگمنٹ، سندھ کے وزیر اعلیٰ، وہ اپنی ٹیم بنانے میں مصروف ہیں، کیا ترجیحات ہیں ان کے سامنے۔ اور آخری سیگمنٹ، کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت، اس کو سیف سٹی بنانے کے لیے یا محفوظ شہر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، سیف سٹی پروجیکٹ ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش، یہ ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے نمٹا جائے، اور نہ صرف یہ کہ فوجی سطح پہ بلکہ دوسری جانب جو بیانیہ کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے یا مختلف بیانیہ دینے کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی فوکس ہے۔ لیکن داعش یا اسلامک اسٹیٹ اور اسی طرح کے دیگر جو عسکریت پسند گروپ ہیں، جو سب سے زیادہ جس چیز کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ بہت بڑا خطرناک پہلو ہے، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، اس میں دیکھا یہی گیا کہ داعش نے ان ذہنوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے جو باوجود جن کی ذہنی صحت درست نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ اپنے آپ کو تنہائی کا شکار محسوس کرتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ وہ مذہب کی جانب رجوع کرنے کے لیے ایک ارادہ بناتے ہیں، اور داعش ان کو سٹرائک کرتی ہے اور ان کو ریڈیکلائز کرتی ہے۔ اور اس کے لیے سوشل میڈیا کو نہ صرف یہ کہ ریڈیکلائزیشن کا بلکہ بھرتیوں کا بھی ایک اہم ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ کے عہدیدار، خاص طور پہ گریگ سیلم، جن کا میں ریفرنس دے رہا ہوں، یہ ڈائریکٹر ہیں آفس آف کمیونٹی پارٹنرشپ ایٹ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو داعش ہے، یہ اس وقت سب سے زیادہ کمپلیکس چیلنج ہے، اور یہ کہ حکومت اور جو باقی انڈسٹری سے مراد سوشل میڈیا کی انڈسٹری ہے، جس کو اس کا سامنا ہے۔ پہلے ذرا انہی کے طریقہ کار پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ ہیں، مڈل ایسٹ ایشو کے، اس کے علاوہ ملیٹنسی ریلیٹڈ ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ فیصل محمد، ریسرچ فیلو وتھ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز اسلام آباد، اور فارمرلی وہ ایسوسیٹ رہے ہیں جیمز مارٹن سینٹر فار نان پرولیفریشن کے ساتھ۔ کچھ دیر بعد بھارت سے ہمارے ساتھ محمد لائق ہوں گی، ایکسپرٹ ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اور سوشل میڈیا انگیجمنٹ میں بزی ہیں کافی۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، اور یہ ہمارے پینلسٹ ہیں جن سے ہم اس پہ پہلے سیگمنٹ پہ سب سے پہلے بات کریں گے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ فیصل اقبال، آپ کے بھی ہم مشکور ہیں۔ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ریکروٹمنٹ اور ریڈیکلائزیشن دونوں میں کتنا بڑا ٹول بن کے ابھر رہا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے میں کیا دقتیں پیش آ رہی ہیں؟
دیکھیے، یہ انٹرنیٹ جو تھا، یہ تو پہلے سے قائم تھا، یہ ایک ڈبل ایج سورڈ کہہ لیجیے، وہ اس طرح کے اس کا اچھا استعمال بھی ہے اور برا استعمال بھی ہے، اور اگر ایک سیگمنٹ اس کو استعمال کر سکتا ہے تو دوسرا سیگمنٹ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آبجیکٹو کیا ہے۔ اصل پرابلم ہمیشہ اسی بات پہ ہوتی ہے کہ جہاں کانفلکٹ آف آبجیکٹو پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں پر ایک ہی انسٹرومینٹ دو طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ کو برا کہنے کے بجائے سوچنا یہ چاہیے کہ آیا جو آبجیکٹو سامنے رکھے جا رہے ہیں ڈفرنٹ گروپس کے، وہ درست ہیں کہ نہیں، اور ان مقاصد یا آبجیکٹو کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ اس میں انٹرنیٹ بہت افیکٹو، بڑا مضبوط قسم کا ایک ہتھیار ہو سکتا ہے۔ ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق سوچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کو برا نہ کہیے، انٹرنیٹ کو ایک غلط چیز نہ سمجھیے، لیکن سب سے اہم بات جو سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک انسٹرومینٹ کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ برے طریقے سے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کا برا طریقہ استعمال کرنے کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام لینے ضروری ہیں۔ اس کے لیے آبجیکٹو کو بدلنا اور انسٹرومینٹس کو بدلنا ضروری ہو جاتا ہے۔
اس کو یہ بدلنا ضروری ہو جاتا ہے. فیصل محمد, آپ کی طرف آتے ہیں, کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ سوشلی کیا کرنا پڑے گا, سیکیورٹی کے اعتبار سے کیا کرنا پڑے گا, اور ظاہر ہے جو یہ چیزیں ہیں جیسے اب انٹرنیٹ ہے یا سوشل میڈیا جو ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں, زبیر اقبال صاحب نے بالکل درست کہا کہ اس کا پازیٹیو استعمال زیادہ ہے دنیا میں اگر آپ اس کا موازنہ کرنا چاہیں گے, لیکن جو نیگیٹو ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اور واقعتاً اٹ سیلف یہ کتنا خطرہ بن رہا ہے آپ کے خیال میں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اس کے لیے؟
بہت شکریہ سب. اچھا سر, جیسا زبیر صاحب کہہ رہے تھے, اس کا مثبت استعمال بھی ہے, منفی استعمال بھی ہے. جو اسلامک اسٹیٹ کر رہی ہے اور دوسرے گروپس کر رہے ہیں, وہ ایک اور طریقے سے اپنے ٹارگیٹ کو اپروچ کر رہے ہیں. ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا بیانیہ آسان اور ڈائریکٹ ہو کے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ امریکہ جو انسا ہے وہ دنیا میں جتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ہیں, مسلم دنیا کے اندر ناانصافیوں کے پیچھے امریکہ اور مسلم دنیا کی حکومتوں کا ہاتھ ہے, وہ کنٹرول کرتے ہیں اسے, اور اس کا آپ کو حل چاہیے, ہم اسلامک اسٹیٹ اس کو لے کے دیں گے. یہ جو بیانیہ ان کا ہے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے یا اس کے آگے انٹرنیٹ کا استعمال کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا, ان کو یہ بتانا پڑے گا, تاریخ سے واقف کرانا پڑے گا, کیونکہ جن لوگوں کو آئی ایس ٹارگیٹ کرتی ہے جا کے, جو ہماری ینگسٹر لاٹ ہے, ان کو تاریخ کی اتنی سمجھ نہیں ہے, انہوں نے پیچھے پڑھا نہیں ہوا. انہوں نے جب پڑھا نہیں ہوا تو وہ چیلنج بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک لگتی ہے, میڈیا بھی یہ بات کرتا ہے, یہ بات واقعی ٹھیک ہوگی. اور آئی ایس کا جو ماڈل ہے اس کے اندر تو بیسیکلی اس طرح ہے سر کہ آپ انٹرنیٹ کے ساتھ بھی ان سے رابطہ کر لیں, اور اس کے بعد کہیں بھی جا کے آپ کوئی اٹیک کر لیں تو واقع کر دیں اور کہہ دیں جی آئی ایس نے کیا. ڈائریکٹ لائن آف کمیونیکیشن بھی اس طرح کوئی نہیں ہوگی, کوئی اس کے پیچھے پلاننگ بھی نہیں ہوگی اتنی, لیکن وہ ون آف ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو کنٹرول کرنا سیکورٹی اداروں کے لیے حد سے زیادہ مشکل. اس وجہ سے ہے کہ ہر بندہ سسپیکٹ ہو جاتا ہے, ہر انسان کو آپ مشکوک نہیں سمجھ سکتے, آپ پوری آبادی کو اپنے خلاف نہیں کر سکتے. اس کا طریقہ جو سیکورٹی ادارے نکالتے ہیں وہ یہ کہ وہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ کون کس طرف جا رہا ہے, اس کی کیا امپلیکیشن آ رہی ہے, اس کے طریقے پیٹرنز ہیں, اس میں کافی کچھ آئی ٹی کے لوگ ہیں, انہوں نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, وہ چل رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو کام ہمیں معاشرتی طور پہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انگیج کانورسیشن کروانی ہے لوگوں کے درمیان, ان کو بتانا ہے کہ آپ کے آئیڈیاز کے لیے اس کے علاوہ بھی ایک بیانیہ موجود ہے جو آئی ایس کا بیانیہ ہے, اور اس کو زیادہ پاپولر بھی کرنا ہے.
ٹھیک, زبیر اقبال صاحب, تو اس ریفرنس میں کیا یہ سمجھا جائے کہ جو اصل محاذ ہے وہ بیانیے کی جنگ ہے, نیریٹو کی جنگ ہے, وہاں پہ فائٹ کرنا ہوگا داعش یا دیگر عسکریت پسند گروپوں کے نظریات کے ساتھ, اور جو لوگ مذہب کی طرف یا اس جانب رجوع کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ گروپ سب سے پہلے ان کے پاس پہنچیں جو ایک ویل تھاٹ نیریٹو ہے یا کاؤنٹر نیریٹو ہے, وہ ان کے ٹیبل پہ یا ان کے سسٹم پہ پہلے پاپ اپ ہونا چاہیے, اس جانب توجہ ہو.
کو جو فرمایا کاؤنٹر نیریٹو بہت ضروری ہے اور وہ افیکٹو ہونا چاہیے. اس میں یہ بھی بات ہے کہ آپ کے جو پرانے جو مس گیونگز ہیں, جو ڈسٹرسٹ ہے, اس کو ختم کرنا ضروری ہوگا. وہ کیسے کیا جائے گا؟ اس میں وقت لگتا ہے. سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ آئی ایس کا جو معاملہ ہے وہ اب ایک ٹیریٹوریل ایشو نہیں رہا, وہ اب ایک میسج بنتا چلا جا رہا ہے. وہ اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ٹیریٹریز کو کنٹرول کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو ملٹری سکسیسز ہوتی ہیں ان کا فائدہ سے اسی صورت میں ہوتا ہے اگر آپ آبجیکٹیوز اور نیریٹو کو ختم کر دیں. اب اگر آبجیکٹیو اور نیریٹو انٹرنیشنل ہو گئے ہیں اور ان کو ایک ٹیریٹری کی ضرورت نہیں رہی, تو پھر ایسی کنڈیشن میں آیا کہ ہمیں ملٹری فورسز استعمال کرنی چاہیے یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کرنا چاہیے. انٹرنیٹ کے جو جہاں تک تعلق آ جاتا ہے, اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نئے نیریٹو جو ہیں ان کو سامنے لا سکتے ہیں. لیکن جیسے دوسرے صاحب نے فرمایا, اسلام آباد سے انہوں نے بالکل درست فرمایا کہ جب تک آپ ایک ایسا کاؤنٹر نیریٹو پیدا نہیں کریں گے جس کو لوگ ایکسپٹ کر لیں, ریکگنائز کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو سب ایکسپٹ کر لیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جلدی سے جلدی ایک کاؤنٹر نیریٹو کی طرف جانا ضروری ہے, اور وہ کاؤنٹر نیریٹو واشنگٹن سے نہیں آئے گا,
وہ اسلامی دنیا سے آئے گا,
ان ممالک جہاں پر آئی ایس آئی
Exactly. زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, فیصل محمد صاحب آپ بھی. تھوڑا سا ٹیکنیکل اینگل آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنیکلی یہ کتنا ممکن ہے, یہ اس نوعیت کی جو تنظیمیں ہیں جو نوجوان ذہنوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتی ہیں یا ان کو ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کا طریقہ کار کیا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو خاصی حد تک سیکیورٹی کے اداروں سے بچانے میں کیوں کر کامیاب رہتی ہیں؟ تھوڑا سا ٹیکنیکل زاویوں پہ بات کرتے ہیں. محمد لائق ہمارے ساتھ ہیں، ایکسپرٹ ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر، اور اس کے علاوہ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا انگیجمنٹ کے اوپر، اور بات کرتے رہتے ہیں ان ایشوز کے اوپر. بھارت سے انہوں نے جوائن کیا ہے. محمد لائق، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو چیلنج ہے یہ صرف امریکہ کے سامنے نہیں ہے، یہ تقریباً دنیا کے تمام ملکوں کو اس وقت ملیٹنسی کی کسی نہ کسی شکل کا سامنا ہے، جس میں وہ انٹرنیٹ کو ایز ویپن یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، نمبر ایک تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں جو ان کے آپریٹیوز ہیں، جو ان کے بیہاف پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ سیکیورٹی کے اداروں کی نظروں میں نہیں آ پاتے ہیں؟ ایک بات. اور یہ کہ ان کا طریقہ واردات ہے کیا، وہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ان کا ممکنہ اتحادی یا ان کا ریکروٹ ہو سکتا ہے؟
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام،
بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کے لیے کہ میں اپنی باتیں اپنی سمجھ شیئر کر سکوں لسنر سے. اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایسی آرگنائزیشنز اور اس کے ممبرس آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی طرف اپنی باتوں میں لا سکتے ہیں، انسپائر کر سکتے ہیں. تو جو میری سمجھ ہے، میں نے جو سمجھا ہے سوشل میڈیا میں ڈیبیٹ سے اور ایشوز جو ڈسکس ہوتے ہیں، چیلنجز، اس میں اس سے کچھ کامنٹس اور پوسٹ اور ٹویٹس دیکھ کے سمجھ میں کچھ تو آ جاتا ہے کہ اس ینگسٹر کی، اس نوجوان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور وہ کتنا ریلیجن سے یا سوشل چیلنجز سے یا پولیٹیکلی کتنا امپریسڈ ہے وہ. تو اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اس بچے کی سمجھ کیا ہے اور ہم اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اپنے پلان کے لیے، یہ میں سمجھتا ہوں.
ٹھیک ہے. اچھا، اس سے یعنی اس کے جو اسٹیٹس ہیں اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ فائنانشلی سوشلی ڈپرائیوڈ ہے یا ریلیجن کی طرف رجحان ہے، کس طرح کے نظریات ہیں. اچھا، اب دوسرا، پھر وہ پہنچتے کیسے ہیں؟ صرف فیس بک، ٹویٹر، کیا چینلز ہیں وہ جو وہ یوز کرتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے، اور ایسے کہ وہ ہائی لائٹ بھی نہیں ہوتے زیادہ تر کیسز میں؟
دیکھیے، نارملی سوشل میڈیا تو ابھی بہت سارے آ گئے ہیں، بہت سارے یوز ہو رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو یوز ہو رہا ہے وہ فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے، انسٹاگرام بھی بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں. تو یہ تین چار جو ہیں بیسیکلی اس میں یوز ہو جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ یوز ہوتے ہیں ینگسٹرز. اور کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا مجھے نہیں لگتا کہ ایک ایکسپرٹ کے لیے، اسکلڈ پرسن کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ہم کس کو ٹارگٹ کریں. اگر کچھ دنوں تک، کچھ ویکس یا سپوز ون منتھ تک کسی کو آبزرو کریں تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. یا جو بھی ٹاپک ورلڈ لیول پہ جو ٹاپک ڈسکس ہو رہے ہیں ٹیررزم کے بارے میں، یا ہاٹ ٹاپکس پولیٹیکل ڈسکس ہو رہے ہیں، اگر وہ ہیش ٹیگ لگا کے سرچ کر لیں تو ورلڈ لیول کے سارے ٹاپکس، پوسٹ اور ٹویٹس مل جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ، چلو یہ تو آئیڈیا ہو گیا کہ صاف ٹارگٹ کون ہو سکتا ہے، اس کا تو اندازہ ہو گیا، لیکن ان کو ٹارگٹ بنانے والوں کا اندازہ کیسے ہو؟ ان کی پہچان یا ان کو کیسے شناخت کیا جا سکتا ہے انٹرنیٹ سے کہ یہ لوگ در حقیقت جو ہے وہ آئی ڈیز ہیں یا وہ لوگ ہیں خفیہ آئی ڈیز کے پیچھے یا فیک آئی ڈیز کے پیچھے چھپے ہوئے جو ریڈیکلائزیشن کے لیے لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں؟
اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا کسی بھی کنٹری کی پولیس اور انٹیلیجنس اور سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں سوشل میڈیا آرگنائزیشنس کی، سوشل میڈیا ایکسپرٹس کی ہیلپ چاہیے ہوگی یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ کون سی آئی ڈی کریٹ ہو رہی ہے، کون سے لوکیشن سے، کون سے ڈیوائس سے نئی نئی یوزر آئی ڈیز کریٹ ہو رہی ہیں اور کلوز ہو رہی ہیں.
صحیح.
ایٹ لیسٹ
کیا اس کو کیموفلاج بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ کہ یعنی وہ ایسی بھی ہے
فریکوئنٹلی کریٹ ہو رہے ہیں، تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے.
تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنی آئی ڈیز کو کیموفلاج کر لیتے ہوں، پتا چلے کہ وہ پوائنٹ اے پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ کسی اور پوائنٹ پہ ہوں؟
ये पॉसिबल है, ये नॉर्मल यूजर के लिए पॉसिबल है, लेकिन अगर इसमें, इसीलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की, एक्सपर्ट की अगर हेल्प मिले तो ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है. क्योंकि हम अगर मोबाइल फोन यूज करते हैं तो ये रोमिंग करके या लोकेशन को डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर अगर कोऑपरेट कर रहा है डिपार्टमेंट को, तो फिर मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा सेल, कौन सा नेटवर्क और कौन से टावर से नेटवर्क सिम कार्ड पे जा रहा है, मोबाइल फोन पे जा रहा है.
सही.
तो अगर सोशल मीडिया सर्वर पे जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उन्हें पूरी जानकारी, एग्जैक्ट जानकारी होती है. अगर ये, और ये किसी एक कंट्री की डिपार्टमेंट से नहीं होगा, डिफरेंट कंट्री के डिपार्टमेंट को एक साथ मिलके
पे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो,
एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी.
बहुत शुक्रिया मोहम्मद लईक, आपने में भारत से ज्वाइन किया और आपने में अपडेट किया. जुबैर इकबाल साहब, आपने सिंगल पे गुफ्तगू उनकी भी सुनी है, फैसल मोहम्मद आपने भी. जाहिर है कुछ टेक्निकल एंगल है, आपने जो दूसरे जो बयानिए की जंग है उस रेफरेंस में अपना नुकता नजर दिया है. अब थोड़ा दूसरी जानेब आते हैं, यानी एक तरफ तो ये साइबर वार है और इसके लिए मैदान बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन अब ज़मीन के ऊपर भी दाइश के ख़िलाफ़ हमले बड़ी शिद्दत इख्तियार करते नज़र आते हैं. वहाँ पे सीरिया के अंदर हलब में कम अज़ कम इस्लामिक स्टेट के 19 जो टैक्टिकल यूनिट्स है या 17 जो एक्सट्रीमिस्ट फाइटिंग पोजीशंस थी उनकी, उनको टारगेट किया गया है. ताज़ा तरीन जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं एलेपो के अंदर और उसमें उनको हदफ बनाया गया है. ये जो इंटेंस फाइटिंग है या इंटेंस अटैक्स हैं, ये जमीनी सतह पे कितना कमजोर कर रही हैं दाइश को, अब इसका एनालिसिस लेते हैं. जुबैर इकबाल साहब, सबसे पहले आप
ये देखिए, सबसे बड़ी बात याद आती है कि जब आप इस किस्म के अटैक्स करते हैं तो आप दूसरी जो आपके एनिवर्सरी, जो एनिवर्सरी है जिसको दुश्मन कह लीजिए, आप उसको ये खबर दे देते हैं कि आप उनके खिलाफ इन इलाकों में जंग करने के लिए तैयार हैं, तो यकीनन जो जो दुश्मन है वो अकेला तो नहीं बैठेगा, वो खामोश तो नहीं बैठेगा, वो भी रिएक्ट करता है और वो भी अपने नए तरीके निकालता है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए और काउंटर अटैक के लिए. तो मुश्किल ये आ जाती है कि इस किस्म के जो फिजिकल अटैक्स होते हैं, जो आर्म एक्शन जो होता है, उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत लिमिटेड होते हैं. वो इसलिए कि आप एक आइडिया को मिलिट्री फोर्स से लड़ रहे हैं, जो बहुत मुश्किल हो जाता है. जो कुछ एलेपो में हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, वो इसलिए कि या यकीनन उसमें टारगेटिंग जो की गई वो आईएसआईएस की जो फोर्सेस से उनको की गई, लेकिन उसके साथ बहुत से सिविलियन मारे गए. अब जो सिविलियन मारे गए वो ये नहीं देखते कि इस वजह से हुआ कि आईएसआईएस वहां बैठा हुआ था, सिविलियन तो किसी और तरीके से सोच रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा है, उनको नुकसान पहुंचाने वाले एलाइज हैं, तो एलाइज के सपोर्टर्स नहीं होंगे, एलआई के खिलाफ हो जाएंगे. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए सबसे अहम बात यह आ जाती है कि आप इस जो दुश्मन है उसको किस स्टेज पे और किस तरीके से काउंटर करना चाहते हैं. अगर आप सिर्फ मिलिटरीली करेंगे तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए मिलिटरी के साथ साथ आपको जैसे कहते हैं वॉर ऑफ आइडियाज जो है उसमें सक्सेस हासिल करना जरूरी है. और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप ये पहचानें कि लोग ये क्यों कर रहे हैं और उसके पॉलिटिकल सॉल्यूशंस क्या हैं, जो कि आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, सबको मालूम है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन आज से 3 साल पहले भी थे लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसका असर हम आज देख रहे हैं.
सही. फैसल मोहम्मद साहब, आप बताइएगा, अगरचे ये कहा जाता है कि ज़मीन तो सुकड़ रही है दाइश के लिए, लेकिन उसकी इस सलाहियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो दुनिया में कहीं भी स्ट्राइक कर सकती है. ये जो ताज़ा तरीन हमले हैं दाइश में, ख़ासतौर पे मशरक़ वस्ती के अंदर, उसको किस हद तक कमज़ोर कर सकते हैं और फिर आपके ख्याल में उनकी जो पोटेंशियल है उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ तादाद नहीं बल्कि उनके पोटेंशियल को भी.
असद साहब, जिस तरह जुबैर साहब, इकबाल साहब सॉरी कह रहे थे, ये अभी जो ताजा तरीन हमले हुए हैं इसमें दाइश को फौजी तौर पे तो नुकसान पहुंचा और ग्राउंड पे पहुंचा है, लेकिन इसके साथ साथ एक इंसानी बहरान भी एलेपो के अंदर पे सर उठा रहा है. 3 लाख लोगों को इस वक्त शहर जरूरियात, खुराक की जरूरत है. अक़वामे मुत्तहिदा के नुमाइंदे, इसके लिए जितने भी पार्टीज हैं कॉन्फ्लिक्ट के, इस वक्त एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं कि ह्यूमन कॉरिडोर बनाने दें और सप्लाईज जाने दें, लेकिन नहीं जाने दी जा रही. एक रूसी गवर्नमेंट का प्रपोजल भी ऑन द टेबल है, लेकिन सीरियन गवर्नमेंट, आईएसआईएस वाले और उसके अलावा बाकी इतने ग्रुप्स हैं, वो अभी सीज फायर करने को तैयार नहीं हो रहे. ये जो 3 लाख लोग हैं और ये जब इनकी तस्वीर मीडिया पे आएंगी आने वाले दिनों में, ये इससे मजीद लोग आईएस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक तो ये मामला इसका है कि ये जो चीजें हैं इसके साथ साथ इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा, इन सब मामलात को भी। दूसरा, पॉलिटिकली एक प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से। जब तक एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलता नहीं है तब तक इसका फायदा नहीं होगा, आप जितने मर्जी हमले कर लें।
सही। अच्छा, चंद सेकंड की मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। तो मिलिटेंसी है हमारा मौजू, लेकिन ये मिलिटेंसी अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। अफगान तालिबान उनकी जानब से खबरें ये आ रही हैं कि एक जनूबी ज़िले पे उन्होंने दोबारा उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है, और साथ साथ ये कि उनकी एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के बारे में भी कुछ इत्तलात हैं राइटर्स की। एक ब्रेक के बाद आपके सामने रखते हैं।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ।
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तफाक नहीं होगा।
प्रोग्राम जहरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है इसकी गुलरुख। और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान लेड मिलिटेंसी पे, हमने दाइश पे या इस्लामिक स्टेट पे पहले बात की है। अफगानिस्तान से मुतालिक दो डेवलपमेंट्स हैं। एक तो खबर ये आ रही है कि जो जनूबी सूबा है हेलमंद का, उसका अहम ज़िला है, उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया या दोबारा कंट्रोल उन्होंने हासिल कर लिया है। सूबाई हुकाम हफ्ते को उन्होंने ये बताया था कि शदीद लड़ाई वहाँ पर हुई, जिसके बाद तालिबान के ज़िला खानशीन में घुस आए और इस लड़ाई में अफगान पुलिस के 20 एहलकार उनको हलाक कर दिया गया और कई उसमें जख्मी भी हुए हैं। और हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में अब भी लड़ाई जारी है। तमाम तालिबान के जो तर्जमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ट्विटर पर अपना पैगाम में एक दावा यह किया है कि तालिबान का पूरे ज़िले पर कब्जा हो चुका है। तो एक तो हम ये तालिबान मिलिटेंसी को जानेंगे कि उनकी रिजिलियंस उन पे हमले के तकरीबन 16 बरस बाद भी क्यों कर मौजूद है, इसके बावजूद कि वहाँ पे नेटो ऑपरेशंस रहा, नेटो के अम्ब्रेला के नीचे 100 मुल्कों की तकरीबन फ़ौज वहाँ पे रही, अभी भी अमेरिका की और नेटो के फ़ौजी वहाँ पे एक तादाद में मौजूद हैं, अफगान फोर्सेज अपने तौर पर डिवेलप होने की कोशिशें कर रही हैं, इसका जायज़ा लेंगे। और दूसरा ये कि रॉयटर्स जो कि फ्रांसीसी खबरसान इदारा है, उसने बाकायदा नाम लेके और तारीखें बता के बताया है कि 28 से 22 जुलाई के दरमियान तालिबान का एक जो वफ्द था उसने चाइना का दौरा किया है चाइना की दावत के ऊपर, और इस दिन वफ्द की क्यादत तालिबान के रहनुमा अब्बास सतनकज़ई ने की थी, और ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस को हेड करते रहे हैं और कतर में जो पॉलिटिकल ऑफिस है उसको हेड करते रहे हैं। ज़रा इसको भी देखेंगे कि वो किस हद तक इंगेज करने की कोशिशें हो रही हैं। पहले मिलिटेंसी की जानेब आते हैं। इस सेगमेंट में मज़ीद हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारे साथ इस हिस्से में मीर वैस अफगान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इश्यूज़ के एक्सपर्ट हैं, लंदन में बेस्ड हैं। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब पहले से हमारे साथ मौजूद हैं और फैसल मोहम्मद साहब। ज़ुबैर इकबाल साहब, ज़रा इस मिलिटेंसी की जानेब आइएगा, तालिबान की मुज़ाहमत और अभी तक उस मुज़ाहमत का सिलसिला जारी होना, अगर हम ये कहें कि ये तो अगली जनरेशन में ये जंग चली गई है जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन अब भी उनकी रेजिस्टेंस या ये सलाहियत कि वो बड़े इलाकों को रिकैप्चर कर सकें या उनका कंट्रोल हासिल कर सकें, ये क्यों कर मुमकिन हो पा रहा है?
देखिए, इसके दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि जहाँ तक अफगानी फोर्सेज का ताल्लुक है वो बहुत कमजोर है, वो मोटिवेटेड भी नहीं है और उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती कि वो खड़े होके लड़ें और उसके बाद जो जो कैप्चर कर लें, जो हिस्से कैप्चर कर लें, इलाके कैप्चर कर लें, उनको कंट्रोल और मेंटेन कर सके, एक तो बात ये आ जाती है। दूसरी उसके साथ साथ बात यह है कि जहां तक ये हेलमंद प्रोविंस का मामला है वो एक मुआशी मामला है और बड़ा आम मुआशी मामला है। याद रहे कि इस इलाके में अफगानिस्तान की कोई 75% ओपियम प्रोडक्शन होती है
सही।
और ओपियम ट्रेड जो है वो तालिबान के 35 से 40% बजट का हिस्सा है, तो इसलिए तालिबान के लिए उस इलाके को कंट्रोल करना बहुत अहम है। ऐसी कंडीशन में तालिबान अपनी ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस और खासतौर पर वेल ट्रेन फोर्सेज को वहां पर इस्तेमाल करते हैं। ये दो मामला जो हैं उनको देखते हुए मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं। याद रहे कि ये इस वक्त जो जो आप खानकाह में जो देख रहे हैं, खानसी में जो देख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ये पॉपी प्रोडक्शन का एक प्राइम पीरियड है, जब वहां पर जो पॉपी सीड, जो पॉपी फ्लावर्स हैं, वो इस वक्त अपने अरूज पे पहुंचे हुए हैं। उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है और इसीलिए तालिबान की कंटिजेंट बहुत स्ट्रांग है। ये भी हो सकता है कि जब ये कल्टिवेशन खत्म हो जाए, हार्वेस्टिंग हो जाए अक्टूबर नवंबर में, तो शायद विड्रॉ कर जाए। लेकिन जब तक ये पोटेंशियल बाकी है, वो इसको इस्तेमाल करने के लिए अपनी हर चीज, अपना हर हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार होंगे। ऐसी कंडीशन में अफगानिस्तान को क्या करना चाहिए? ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है जो पिछले 10 साल से सोचा जा रहा है, लेकिन अफगानी फोर्सेस जो है बहुत कमजोर हैं और उनको कंट्रोल या उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कोई कामयाब नहीं है।
जी मीर भाई सफखान साहब, आप अपना एनालिसिस दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें लंदन से ज्वाइन किया है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मिलिटेंसी या उनकी मुजाहमत 15 साल बाद भी, इसके बावजूद कि एक हैवी उनको मिलिट्री फोर्स का सामना रहा है, वो कैसे अभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं या कैसे तक अब तक वो अपनी ऐसी पावर को भी मेंटेन रख रहे हैं कि वो कहीं भी जाके हमला भी कर सकते हैं और कुछ वक्त के लिए उसको अपने कंट्रोल में भी, उस इलाके को या जिले को और बास केसेस में सूबों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं?
इसमें दो तीन इलत मौजूद है। एक तो अफगान गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है उसमें भी गुज़श्ता में कुछ इस तरह हुआ है कि उन्होंने तालिबान को सुलह करने के बजाय उसने तालिबान को टूटने की कोशिश की है, और तालिबान को टूटना उनका अहदाफ में से एक था ताकि वो टूट जाए और इन लोग टूटे हुए शाख से सुलह कर सके। एक तो यही मसला था। दूसरी जानिब हमारी जो बदकिस्मती से हमारी जो नेबर्स कंट्रीज है उनकी वजह से भी, जो जहां पे अफगान गवर्नमेंट ये ब्लेम करते हैं, और अब तो बात सामने भी आया हुआ है कि तालिबान वहां पे छुपे हुए हैं और वहां से ये लोग हमले करते हैं, आते हैं और अफगानिस्तान में उनकी जो मिशन है वो जारी है। दूसरी बात यही सामने आ रहा है। तीसरी बात जो है वो यू है कि तालिबान वहाँ पे लोकल वाइज उनको मवाकी मिल चुके हैं छुपने की, वहाँ पे रहने की और लोगों को, लोगों के साथ काम करने की या लोगों को इस्तेमाल करने की। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि अफगान गवर्नमेंट के अंदर जो वहाँ पे फसाद मौजूद है, जो वहाँ पे मसले मसाइल मौजूद है, उससे लोग तंग होकर तालिबान को अपने लिए वो बेहतर समझते हैं। अलबत्त ये इलाकों में, दूरदराज इलाकों में, जहाँ तक हेलमंद सूबे का मकसद बात है, जो हेलमंद सूबे में तालिबान ने कोई नई कब्जा किया हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। तालिबान ने इससे पहले कुंदुज में पूरे सूबे में भी कब्जा किया हुआ था और उसे भी अपने कंट्रोल में नहीं रख सका, और ये जिला भी, ये भी अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। और इसके अलावा हेलमंद के कई जिले जो है वो तालिबान के कंट्रोल में, कंधार के कुछ जिले तालिबान के कंट्रोल में, पूरे अफगानिस्तान में इस तरह के कई जिले हैं जो तालिबान के कंट्रोल में है, सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान को वही नुकसान नहीं पहुंचा जो अफगान गवर्नमेंट चाह रहे थे।
एग्जैक्टली। फैसल मोहम्मद साहब, क्विकली इस पे आपका एनालिसिस, फिर दूसरी डेवलपमेंट पे हम आते हैं कि चीन रवानगी अफगानिस्तान की या चीन का दौरा अफगानिस्तान के डेलीगेशन का, जिसकी इत्तलात हैं, लेकिन पहले तालिबान मिलिटेंसी पे बात कीजिएगा।
जी सर, देखिए आज ही, आज कल बल्कि रिपोर्ट आई थी कांग्रेस रिसर्च सर्विस की अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद से, जब उनको मई 2020 में उनको एक ड्रोन हमले में मारा गया था पाकिस्तान के अंदर, तब से अब तक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान 5% ज्यादा जमीन पे कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। जितना उनके पास था उससे 5% और ऐड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि तालिबान की जो मूवमेंट है वो फैल रही है, और आज तक जितनी भी स्टडीज हुई है काउंटर इंसर्जेंसी पे, काउंटर और इंसर्जेंट मूवमेंट पे, वो ये कहती है कि बाहर के ममालिक की सपोर्ट के अलावा भी कोई भी इंसर्जेंट मूवमेंट तब तक कामयाब नहीं हो सकती, वो उस वक्त तक जमीन पे पेशकदमी नहीं कर सकती जब तक उसको मकामी आबादी की सपोर्ट हासिल ना हो।
सही।
और ये नजर आता है कि तालिबान को मकामी आबादी की सपोर्ट है, जिस तरह आप इससे पहले एक वो दूसरे मुकर्रर कह रहे थे कि नेबरी ममालिक की सपोर्ट भी है उन्हें, वो भी है, लेकिन मकामी आबादी की सपोर्ट भी है। जब तक मकामी आबादी, तालिबान हर साल अपने अटैक्स करते रहेंगे। हेलमेट की जहां तक बात है, तालिबान इस पे एक हफ्ता 10 दिन के अंदर अफगान फोर्सेज और अलाइड फोर्सेज इस पे काउंटर अटैक करना शुरू करेंगे और तालिबान छोड़ देंगे। तालिबान के पास अभी होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, वो सिर्फ कैप्चर करते हैं, 2 दिन दिखाते हैं जी कि उन्होंने कंट्रोल किया है, उसके बाद उनके उनसे इलाका वापस छीन लिया जाता है। 90s के अंदर तालिबान ने होल्ड किया था और 90% टेरिटरी पे वारिसान ही कब्जा कर लिया। अभी इस तरह नजर नहीं आता कि तालिबान पूरा पूरा सुबह होल्ड कर सके और कह सके जनाब कि ये हमारा हो गया।
यानी फॉर द टाइम ये में होता है, जो रिजिस्ट नहीं कर सकते वो एरियल स्ट्राइक है और उसके बाद फिर उनको भागना भी पड़ता है। फैसल, दूसरी डेवलपमेंट पे आइएगा। इतलात ये है, रॉयटर्स खबर सा इदारा फ्रांस का, वो ये खबर दे रहा है कि एक तालिबान का वफद, उसने 18 से 22 जुलाई तक चीन का दौरा किया और मुल्ला अब्बास जो है वो उसको हेड कर रहे थे, जो कि उनके कतर ऑफिस में के पॉलिटिकल हेड हैं, पॉलिटिकल विंग के, उन्होंने वहाँ पे दौरा किया और वो ये दावा करते हैं कि कई मुल्कों के साथ उनके अभी अच्छे ताल्लुकात हैं, सिफारती ताल्लुकात हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर ये वाकईतन दौरा हुआ है, अगर खबर इसको फर्जी तौर पर हम दुरुस्त मान लें, चीन एक ऐसा मुल्क भी है जो आपको मालूम है कि 4 मुल्क उस ग्रुप का हिस्सा है जो अफगानिस्तान के अंदर अमन और मसालत के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं, तो आपके ख्याल में ये डेलीगेशन वाकईतन अगर गया है तो इससे क्या मैसेजिंग क्या होती है, मैसेज क्या मिलता है, क्या इंगेजमेंट करना चाह रही हैं, चीन का रोल इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, एनालिसिस अपना दीजिएगा।
सर देखिए, चीन का और तालिबान का इस पे लिखा कम जाता है, इसके ऊपर खबरें कम आती हैं, लेकिन चीन की तालिबान से एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी है। चीन ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, चीन के मिलिटेंसी के खदशात है कि अफगानिस्तान से स्पिल ओवर ना हो जाए, और वो शिनजियांग के अंदर जो इस्लाम मिलिटेंसी का मामला है, चीन को उसके ऊपर भी खदशात है कि वो लोग अफगानिस्तान के अंदर ना आके यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप बन जाए, तो चीन इन वजूहत की बिना पे तालिबान को इंगेज करता है। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 माह के अंदर वो जो 4 रुक मुल्की प्रोसेस था वो तो खत्म हो चुका था, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे गर्मियां खत्म होती जा रही हैं, ये गर्म सीजन फाइटिंग का खत्म होता जाएगा और सितंबर अक्टूबर आता जाएगा, तो जमीन के ऊपर जंग कम होती जाएगी और एक दफा फिर से एक कोशिश की जाएगी कि डिप्लोमेटिक प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए। तो तालिबान का अगर दौरा हुआ है चीन का, तो ये अगले सर्दियों आने वाले सर्दियों में एक जो प्रोसेस शुरू होगा ये उसकी शायद पहली कड़ी हो। तालिबान ये भी कहते हैं कि वो बाकी रीजनल ममालिक के साथ भी, जिसमें ईरान भी हो गया, वस्ती एशिया के ममालिक हो गए, इन सब से उनकी बातचीत चलती रहती है और इसके सबूत मौजूद है कि इनकी बातचीत चलती रहती है।
जी डॉक्टर जुबैर इकबाल सर, अफगान तालिबान की रिपोर्टेड इंगेजमेंट चीन के साथ और सिफारती रबते, क्या तवक्को रखी जाए कि ये जो क्वार्टेट का ग्रुप है वो वाकईतन कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है इनको इंगेज करने में, तालिबान को मुज़ाकरात की तरफ लाने में?
देखिए, हुआ ये है कि जो मई में इनकी मीटिंग हुई थी वो यकीनन जो इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई थी इस 4 रुकनी ग्रुप की, वो कामयाब नहीं हुई थी, और उसी के वजूहत थी। उसमें एक साफ सबसे अहम बात ये थी कि जहां तक अफगान गवर्नमेंट का ताल्लुक है वो अफगान सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो गई। अब याद रहे कि चीन अपने जो उसका इनिशिएटिव है वो वन बेल्ट वन रोड ओबोर इनिशिएटिव है, उसमें अफगानिस्तान एक बड़ी अहमियत रखता है, इसलिए और चूंकि वो एक लॉन्ग टर्म किस्म का टारगेट है और लॉन्ग टर्म किस्म का इनिशिएटिव है, तो तुर्की ये अब चाइना ये चाहता है कि उसकी जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ वो तो सिर्फ नियर टर्म ही ना हो बल्कि लॉन्ग टर्म भी हो, इसीलिए वो तालिबान के साथ और गवर्नमेंट दोनों के साथ इस तरीके से अपने ताल्लुक रखना चाहते हैं कि आइंदा अगले 10-15 साल के अंदर भी उनकी रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ बेहतर रहे, ताकि उनका ये जो इनिशिएटिव जो है वो कामयाब हो। ऐसी कंडीशन में ये एक नॉर्मल सी और नेचुरल सी बात थी कि चीन तालिबान के डेलीगेशन को बुलाएगा और उनसे बात करेगा। यकीनन ये जब नेक्स्ट मीटिंग होगी जो गालिबन अक्टूबर में होनी है इस 4 रुकनी ग्रुप की, उसमें ये बातें होंगी, उसके मुताबिक इनिशिएटिव लिए जाएंगे, उसके मुताबिक एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा। याद रहे कि अमेरिका के लिए ये सरप्राइज नहीं था, अमेरिका ये जानता था कि इस किस्म का इनिशिएटिव हो रहा है और तालिबान वहां पर जाके बातें कर रहे हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, इसलिए इसको सोचना ये चाहिए कि ये इफेक्टिवली कंस्ट्रक्टिव किस्म का इनिशिएटिव होगा। उसकी 2-3 पॉसिबल पहलू हैं जिनको देखना जरूरी है, वो एक ये कि अगर तालिबान और चीन के दरमियान एक कोऑपरेशन की पैदा हो जाती है तो फिर चीन अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता है बोथ तालिबान पर और अफगानी गवर्नमेंट पे, ताकि इन दोनों को करीब लाया जा सके, जो बहुत आम है, उसके बगैर वहां पर सोल्यूशन पैदा नहीं होंगे।
जी मीरवाइज अफगान साहब, आपका एनालिसिस क्विकली इसके ऊपर, चीन की एंगेजमेंट या तालिबान का एंगेज करना चीन के साथ, क्या ये अच्छी खबर है अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के आमना मन के लिए?
इसमें कोई शक नहीं, बातचीत में जो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं वो अफगानिस्तान के लिए अच्छी खबर है। लेकिन डॉक्टर साहब की बात के मुताबिक, मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो यू है, अफगानिस्तान का गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उस पर लोगों का एतमाद है, और सबसे ज्यादा वोट अफगान गवर्नमेंट को मिल रहा है। ये बात सरासर गलत है कि अफगान लोगों का एतमाद नहीं अपनी गवर्नमेंट पे। हाँ, गवर्नमेंट की कुछ खामियां मौजूद है, जो दूरदराज इलाकों में तालिबान उससे फायदे उठा रही है और उन्होंने फायदे उठाई हुई है। अब बात रह गई जहां तक तालिबान की बाहर की ताल्लुकात की है, तालिबान ने जो कतर का दफ्तर खुला है, जाहिर है उनकी ताल्लुकात के मुख्तलिफ मुल्कों से हैं, और उनके जो पुराना रहबर था उसने भी कई बार कई मुल्कों से ताल्लुक रखने की वो एतराज किया हुआ है, और तालिबान खुद भी ये मान रहे हैं कि हाँ, जहां तक चाइना का ताल्लुक है, अगर तालिबान का ताल्लुक चाइना के साथ दुरुस्त हो जाए तो जाहिर है चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान पे ज्यादा है, तो वो पाकिस्तान तालिबान को पीस की प्रोसीजर तक ला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है।
बहुत शुक्रिया आपका मीरवाइज अफगान, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, आपके भी हम ममनून है। फैसल मोहम्मद साहब, रिसर्च फेलो विद सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज, आप हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। सामिन, ये सेगमेंट यहाँ पे खत्म करेंगे, चंद सेकंड की एक ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर मुतनाज़े साइबर क्राइम बिल, उसकी मंजूरी पे। प्रोग्राम खत आपके, हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-789।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है। जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा सुनता रहता है।
माशाल्लाह, आपके सब प्रोग्रामों काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urdu letters@voanews.com। खत आपके। प्रोग्राम जहारंग में आपका खैर मकदम। ये प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से बराह रास्त सुन रहे हैं। मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं गुलरुख। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे साइबर क्राइम बिल पे, जो बहुत सारे हलकों के नज़दीक अब भी मुतनाज़े है, जिसको मंजूर किया है सेनेट ने, और अब ये एक बार फिर कौमी असम्बली में जाएगा। ऑलरेडी वहां से अप्रूव हुआ था, लेकिन उस पर कई एतराज़ात उठाए गए। एतराज़ात अब भी कई सेक्टर्स की जानिब से, खासतौर पर जो सोशल मीडिया यूज़ कर रही हैं या इंटरनेट पर आज़ादी इजहार के जो हामी ग्रुप हैं, उनकी जानिब से इस बिल पर एतराज़ात सामने आ रही हैं। अगर से इसमें किया गया है कि खा वो मवाद हो जिसका ताल्लुक मुनाफरत से हो, या इसके अलावा किसी की जाती तजहीक या उनकी तस्वीर उनकी मर्जी के खिलाफ पोस्ट करने से मुतालिक हो, खासतौर पर यहाँ तस्वीर बच्चों की, इस रेफरेंस में लेजिस्लेशन तजवीज़ की गई है, इस रेफरेंस में सजाएं भी तजवीज़ की गई हैं। लेकिन बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनका यह ख्याल है कि अभी भी ये इसके अंदर काफ़ी सुकम है, और इसमें इस बात का एहतमाल अपनी जगह पर मौजूद है कि इजहार राय की आज़ादी काफ़ी हद तक मुतासर हो सकती है। वजीर मुमलिकत ब्राय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनुषा रहमान वो ये कह चुकी हैं मीडिया के ऊपर, उन्होंने इस पर भी अपना रद्द अमल दिया है कि इस कानून की वजाहत का जो इख्तियार है वो किसी एक शख्स को नहीं दिया गया, बल्कि अदालतें हैं, ये अदालत के पास इख्तियार होगा कि किसको ट्रायल करना है, और जिसको ट्रायल किया जा रहा होगा उसके खिलाफ उसको याक होगा कि 30 दिन के अंदर अंदर वो किसी भी अदालत में अपनी अपील दायर कर सकता है, दाखिल कर सकता है। और उन्होंने इस बात को भी बावर कराया है कि ये जो मुसवदा है कानून, इस बात को यकीनी बना رہا ہے یا وہ یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے. لیجسلیشن ہوتی ہے لیکن غلط استعمال سے کیسے بچا جائے, یہ سارے ایشوز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, ممبر سینیٹ کی اس کمیٹی کی جس نے یہ بل منظور کیا, اور محمد عامر ہاشم خاکوانی صاحب, تجزیہ کار ہیں, کالمسٹ ہیں, میں انہیں سوشل سائنٹسٹ بھی کہتا ہوں, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں. اپنی ایک ویب سائٹ دلیل ریسنٹلی لانچ کی ہے, اور اس ریفرنس میں میں اس دلیل کو بھی سوشل میڈیا کا ایک کمپوننٹ کہوں گا کیونکہ وہاں پہ بھی عام لوگوں کو اپنا رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیا گیا ہے. وہ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن چند سیکنڈ کی ایک گفتگو ہم آپ کو سنواتے ہیں. سوشل میڈیا کے رائٹس کے حوالے سے, انٹرنیٹ رائٹس کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک تنظیم ہے, اس کے سرکردہ رکن ہیں. تنظیم کا نام ہے بائٹس فار آل, اس کے عہدیدار ہارون بلوچ, انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کی. کیا کہا؟
امپلیمنٹیشن میں ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ججز کی کیپیسٹی کی طرف بھی میں اشارہ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ججز کی ہمارے دیکھا کہ پاکستان میں جو جوڈیشری ہے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کرائمز کی ہیئرنگ کر سکے اور ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ جو انٹرنیشنل گلوبل میکنزمز ہیں ان کو مدنظر رکھ کر ایسے کیسز جیسے سیکشن سائبر ٹیررزم سے ریلیٹڈ یا ہیٹ اسپیچ سے ریلیٹڈ اس میں ڈالی گئی ہیں, تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے جوڈیشری کی کتنی ان چیزوں سے نو ہاؤ ہے.
سینیٹر روبینہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بذات خود بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں اور کافی شیئرنگ پوسٹ کی وہ بھی کرتی ہیں. عامر ہاشم خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں پہلے عامر صاحب سے اس لیے بات کرنا چاہوں گا کہ ان کے جو کوشچنز یا سوالات سامنے آئے تاکہ ان کو رسپونڈ کر سکیں روبینہ خالد صاحبہ. عامر صاحب سے بھی رابطہ نہیں ہوا. روبینہ صاحب آپ ہمیں بتائیے گا, بہت سارے لوگ اس بل پہ اب بھی اعتراض کر رہے ہیں, آلریڈی یہ قومی اسمبلی میں سے جب اپروو ہوا تھا تب بھی اعتراضات تھے, اور اب بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اظہار رائے کی آزادی کا بھی ایشو ہے, اور سیکنڈلی جو ایوالو کیا گیا ہے کہ عدالتوں کو یا جوڈیشری کو تو ان کی تعداد اور ان کے اوپر جو آلریڈی کیسز کا دباؤ ہے اس ریفرنس میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے, کافی سکم ہے اس بل کے اندر. آپ اس کمیٹی کا حصہ تھیں, آپ کیا مطمئن ہیں یہ جو نیا سائبر کرائم بل انٹروڈیوس ہوا ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سائبر کرائم جو ہے ایک بڑا ریلیٹیولی نیو فینومنا ہے انٹرنیشنل اسکیم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو. تو اس کی لیجسلیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ اپنے ایولیوشنری پیریڈ کے اندر ہے اور ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطیاں بھی ہوں, وہ وقت کے ساتھ جو ہے لاز جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے ہماری جو لیڈرشپ تھی اس کا ڈیسیجن یہ تھا کہ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا جائے, لیکن اگر ہم اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیتے تو اس کا جو اصل فارم تھا جو 50 امینڈمنٹ ہم نے کیے اس سے پہلے جس فارم میں تھا, ابھی بھی یہ کوئی بہت اچھا بل نہیں ہے لیکن اس سے قدرے یا کافی بہتر ہے جو کہ اوریجنل اپنی شکل میں تھا. تو اگر ہم اس کو سینٹ میں ریجیکٹ کر دیتے تو یہ اسی اپنی ڈریکونین جو اس کی شکل تھی اس میں چلا جاتا ان دا جوائنٹ سیشن.
صحیح, اور اس میں ایک بات بالکل اپنے لسنرز
میجورٹی میں ہے گورنمنٹ, تو وہ ہم اس میں جو تھوڑی بہت علی ترمیم کر سکتے ہیں اور کری ہے ہم نے وہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا, تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس میں ترمیم کریں گے, ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے.
جی, پاکستان کے کانٹیکس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو عموماً ذہن میں تصور جب بھی سائبر کرائم کی بات ہوگی تو سوشل میڈیا کا استعمال یا وہاں پہ گفتگو کی آزادی سے متعلق لوگ لیتے ہیں, لیکن سائبر کرائم عام اپنے لسنرز کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس میں انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی شناخت, آپ کے بینک اکاؤنٹس, اس میں جو بھی فراڈ ہیں اور زیادہ تر آج کل ماڈرن دنیا کے اندر اسی نوعیت کے فراڈ ہیں, ان کا خاتمہ یا ان کو کنٹرول کرنا بھی سائبر کرائم کے سے متعلق جو لیجسلیشن ہے اس کا حصہ آتا ہے. لیکن ذرا روبینہ خالد صاحب پاکستان اب ذرا سوشل میڈیا کی طرف آئیں, ابھی یہ جو پولیٹیکلی بہت پولرائزڈ ہے سوسائٹی, آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا, تو اس میں بھی کیا یہ احتمال یا یہ خدشات درست ہیں کسی حد تک کہ اس بل کا غلط استعمال ہوگا ان لوگوں پہ جو آپ سے یا کسی اور سیاسی رہنما سے یا جماعت سے اختلاف رکھتے ہیں, اگر وہ ووکل ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں اس میں لپیٹ دیا جائے گا؟
دیکھیے خطرات تو ہمیشہ رہتے ہیں, بہتری کی طرف ہم اس کو لے کے جائیں گے. اس امینڈمنٹ ہم نے حکومت سے وعدہ لیا ہے کہ فردر امینڈمنٹ جو ہے اس کے لیے اس کو کھلا رکھا جائے گا. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ بھول گئے جس نے ہم سب کو مجبور کیا کہ ہم اس بل کو لے کر آئیں, کیونکہ وہ جو ہے وہ عالمی دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس کے اندر بھی اس کا بہت بڑا استعمال ہے. یہ جو साइबर क्राइम के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू और जो डिफरेंट सोशल मीडिया के जो हैं उसके थ्रू ये टूल जो है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है.
बिल्कुल
तो उसके लिए अभी हमने कुछ ना कुछ तो करना है. मतलब सिर्फ इस बात पे कि हम शख्सी आजादी चाहते हैं हम इतना बड़ा नुकसान तो नहीं कर सकते.
बिल्कुल नहीं. तो यहाँ पे अभी कुछ देर पहले बल्कि हमारा ही सेगमेंट था सेनेटर रुबीना की, हम बात इसमें यही कह रहे थे कि अमरीका के अंदर जो इदारे हैं वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट, दाइश या दीगर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वो सोशल मीडिया को रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन का जरिया ना बना सके. तो नेचुरली स्टेट को कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व होना होता है उसके अंदर भी, भले वो जितनी आज़ादियों का हो. तो अब आप यानी हम इसको ये कह सकते हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये चूंकि इब्तदाई मराहल में है लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ है तो आगे चल के रिफाइंड हो सकती है. लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें आप कंसल्ट किया गया है मुख्तलिफ जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं या इसके अलावा जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन की ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे सजेशन ली गई हैं, बाकायदा कंसल्टेंसी की गई है?
बिल्कुल जी, बिल्कुल सजेशन ली गई हैं और हमने इसके ऊपर जो है पब्लिक हियरिंग भी की है. उनकी जो सिफारिशात थी हमने कोशिश की है हम उससे इसको एडजस्ट भी करें. लेकिन हमारे यहाँ एक मसला है कि लोग क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकली डिलीवर करने का टाइम आता है, रिकमेंडेशन देने का टाइम आता है तो फिर बहुत कम लोग जो है दे कम अप विद सॉलिड रिकमेंडेशन. तो एक ये मसला भी है, मतलब उसको लोग बजाय सिर्फ इसको क्रिटिसाइज करने के दे शुड कम अप विद सजेशन.
सही. तो मॉडर्न दुनिया के पास जो मॉडल्स हैं ऑनलाइन सिक्योरिटी के, साइबर सिक्योरिटी के, उनसे इस्तेफादा किया गया है या वो कम से कम आपके सामने हैं?
जी, हमने उनसे भी कुछ चीजें ली हैं और कुछ क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक इस वक्त जो पोजीशन है और दहशतगर्दी के हवाले से जो हालात हैं हमारे इंटरनल वो भी मद्देनजर हमने रखे हैं. तो मैं ये नहीं कहती कि ये बहुत अच्छा बिल है, इसमें अभी भी बहुत सी गलतियां होंगी, सुकन होंगे, लेकिन ये है कि वी हैव टू बिगिन फ्रॉम समवेयर.
सही. एक दो तजावीज मैंने इंटरनेट पे बात सोशल मीडिया यूजर्स की जानिब से देखी भी है, मीडिया से भी उनका ताल्लुक है. मसलन वो ये कह रहे थे कि जैसे जब बात आप करते हैं मजहबी मुनाफरत की तो वहाँ पे आप उसको लिसानी मुनाफरत भी शामिल कर सकते थे, यानी लिसानी मुनाफरत की आपने परमिशन दे दी है. दूसरी बात वो ये करते हैं कि जब आपने इस पर सजा मखसूस की, डेजिग्नेट की कि अगर कोई तस्वीरें बच्चों की और यहाँ तस्वीरें लगाएगा उनकी मर्जी के बरक्स जाहिर है तो उनको सजा है, तो वो किसी की भी तस्वीर मर्जी के बरक्स लगाई जाएगी तो वो सब के ऊपर उसका इतलाक हो सकता था?
वो जो जो जिसको आप जिसकी तरफ आपका इशारा है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है और वो एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में बनता जा रहा है.
सही.
उसके सदबाब के लिए भी कुछ चीजें एडिशन की गई है. लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि इस लॉ के अंदर जब ये हमारे पास आया था तो डेटा प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं थी.
सही.
तो हमने इसमें डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी जो जो फिल्टर्स हम डाल सकते थे वो हमने डाले हैं. हमने डायरेक्ट एजेंसियों को भी पाबंद किया है कि वो पहले अदालतों से रजू करें, अदालत अगर समझती है कि केस है और उनसे इजाजत लेके देन दे कैन गो फॉर प्रोसीज करने के लिए.
सही.
तो वो जो डायरेक्ट एक था कि बिल्कुल ही वन मैन शो था वो चीज नहीं रही, अब इसमें काफी फिल्टर्स आ गए.
ठीक. मैं बिल्कुल जनरली इस बात से भी इत्तेफाक करूंगा और सब इससे इत्तेफाक करेंगे कि सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, जिस तरह कन्वेंशनल मीडिया के अंदर एक एक लफ्ज़ बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिखा और बोला जाना चाहिए, सोशल मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वहां पे जो लोग बैठे हैं वो पूरी जिम्मेदारी से बात करें. और मैं एलिगेशन एथिक्स का ख्याल बहुत ज़रूरी है. हमें आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने ज्वाइन किया है, आप उनसे वाकिफ हैं, डेली दुनिया के लिए कॉलम लिखते हैं, एडिटर हैं, मैगजीन एडिटर हैं, इसके अलावा अपनी वेबसाइट दलील लॉन्च की है जो इंगेज करती है यूथ को और सोशल मीडिया पे एक बड़ी भरपूर जानदार आवाज़ उठाने वाले लोगों को, उस पर अपने नुक्ते नज़र का इजहार करते हैं. खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया. हमारे साथ सेनेटर रुबीना खालिद साहब मौजूद हैं, सेनेट की उस कमेटी की रुकन हैं जिन्होंने ये बिल मंजूर किया है. इस बिल के बारे में आप अपने क्विक अपना एनालिसिस दीजिएगा, कितना बेहतर है, कहाँ पर खामियाँ हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है?
देखिए, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसमें तो कोई शक नहीं कि साइबर क्राइम बिल की एक्ट की जरूरत थी, क्योंकि टेररिज्म के हवाले से काफी सारी चीजें ऐसी आ रही थी जिसपे फेसबुक वगैरह में लोग इस्तेमाल करते थे पेजेस और खासतौर पर वेबसाइट्स भी कई ऐसी हैं जिनको बंद भी करती है पीटीए, लेकिन बहरहाल वो मामला चलते रहे हैं. और चाहे तकफीरी हवालों से भी दूसरों पर कुफ्र के फतवे और फिर का वराना सेक्टेरियन हवालों से भी इसकी शिकायत है, ब्लैकमेलिंग स्टफ के हवाले से तस्वीरें वगैरह अपलोड करने की खासतौर पर बच्चों के हवाले से, ये सब चीजें शिकायत तो इसमें कोई शक नहीं, वो तो अपनी जगह दुरुस्त बात है। इस बिल में मसला ये है कि कुछ इबहामात हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में डिफाइन नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पर यह है कि भाई वेबसाइट को अगर मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो मनफी मकासद का क्या, वो भी डिफाइन उसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। पोर्नोग्राफी के हवाले से बच्चों की पोर्नोग्राफी का जिक्र है लेकिन वैसे पोर्नोग्राफी का नहीं है। इस तरह और कुछ चीजों में यानी मुबीन इबहामात हैं और ये खतरा है। मुझे भी ये है और बहुत से लोग यहाँ पे पाकिस्तान में जो डिबेट हो रही है सोशल मीडिया पे खासतौर पे, उनको खतरा ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना हो।
जी सर रुबीना खालिद साहब, उन्होंने बहुत मुख्तसर अपने चंद पॉइंट्स या अपने जो तहफ़ुज़ात हैं उनको हाईलाइट किया है।
जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये एक रेड अलर्ट होता है कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जिसकी सबसे ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है। तो ये सब चीजें हमारे भी ख्याल में थी, हमने उसको देखा भी, लेकिन फिर मैं यहाँ कहूंगी कि हम इसको रिजेक्ट भी कर सकते थे, हमारे चेयरमैन साहब की ख्वाहिश भी यही थी, लेकिन अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते तो ये जो इसकी ओरिजिनल जो इसकी शक्ल है वो आप इसको जरूर देखिएगा जो कि नेशनल असेंबली से पास हुआ है, वो इसी फॉर्म में जो है ज्वाइंट सेशन में आता और ज्वाइंट सेशन में अपनी जो असल उसकी हैयत थी उसमें पास हो जाता, उस हालत में ये और भी बुरा लॉ होता। लेकिन हमने अपनी कोशिश करके जितना हम कर सकते थे, हम नहीं कह रहे कि ये बहुत बेहतरीन अच्छा लॉ है, अभी भी बहुत बुरा है लेकिन उससे बहुत बेहतर है जो शुरू।
बिल्कुल, आपने जैसे शुरू में कहा कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और जाहिर वक्त के साथ वो रिफाइन होता रहेगा।
और ये हमने कल डार साहब से यकीन दहानी भी ली, हमारे लॉ मिनिस्टर से भी हमने यकीन दहानी ली कि अगर आइंदा हम समझे कि इसके अंदर और भी तब्दीली की जरूरत है तो वो हुकूमत जो है हमारे साथ तामुन करेगी।
जी, अब वक्त की कमी के बायस चुके खाकवानी साहब आपने हमें बहुत बाद में ज्वाइन किया, हम क्विकली अगले अगले सेगमेंट्स पे जा रहे हैं, पहले आप अपना हमें कमेंट्स दीजिएगा। ये प्रोग्राम पहले बताता चलूं अपने सामीन को कि वॉइस ऑफ अमेरिका से बराह रास्त आप सुन रहे हैं वाशिंगटन से, बात हम करने जा रहे हैं सिंध के अंदर चीफ मिनिस्टर की तब्दीली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके ख्याल में क्या सोच के की है, क्या नतज वो हासिल करना चाहते हैं, और सिर्फ चीफ मिनिस्टर के ऑफिस, जबकि जाहिर है जो लीडरशिप की हायरार्की है ऊपर वो तो जाहिर सेम है, ऑर्डर्स का सोर्स या चैनल अगर एक ही है तो क्या तब्दीली की तवक्को आप रखते हैं और कितना ये तजुर्बा आपके ख्याल में कामयाब हो सकता है?
ये आपका सवाल मेरे से
जी पहले आपसे बिल्कुल
जी जी। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ये जो चेहरे की तब्दीली हुई है, चीफ मिनिस्टर की तब्दीली, तो खुश आइंद उन्होंने तब्दीली के लिए कम से कम सोचा थे ही। अब ये है कि अब कैबिनेट की और खास तौर पे जो मतलब प्रैक्टिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं नाम लेते अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सहाफती हल्कों में कम से कम बड़ी क्लियर है बात कि मोहतरमा फयाज तालपुर साहब अगर उनको पीछे हटाया जाता है तो शायद सेन में फिर कुछ चीजें डिलीवर हो सकेंगी और शायद करप्शन की और इस तरह की एलिगेशन इल्जाम में कमी आएगी और लगेगा जिस तरह नए चीफ मिनिस्टर को कोई इख्तियार दिए प्रॉपरली। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरे ख्याल में ज्यादा बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं होगी। और पीएस पार्टी के लिए एक मुश्किल और भी है कि अभी 7-8 साल बाद अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो अपने इलेक्टेबल्स को ज्यादा नाराज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर बल्दियाती इदारों का भी मामला है, बल्दियाती इदारे गहरे फंक्शनल, अब उनको आज निर्बल करते हैं, उनमें उनको फंड देते हैं, कितना देते हैं और क्या नहीं, ये चीजें, ये सब चीजें ऐसी हैं कि पीएस पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सिंध में उनकी गवर्नेंस बहुत गवर्नेंस बारे में तासुर का मौसम यही है, तो उसको दूर करना एक बड़ा चैलेंज है। सिर्फ चीफ मिनिस्टर के चेहरे की तब्दीली से वो दूर नहीं हो सकता, उसके लिए काफी कुछ करना पड़ेगा।
जी सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, जब जैसे कि उन्होंने नाम भी लिया फरियाल तालपुर साहबा का, ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी अगर चेस में कंट्रोल करते हुए अब नजर आते हैं अपनी पार्टी को, इस तब्दीली से क्या मुराद है, सामने मकासद क्या है, और जैसे हमने बात की कि अगर चेन ऑफ कमांड या ऊपर अगर अप्रोच में तब्दीली नहीं आती है तो नया चेहरा क्या डिलीवर करेगा?
देखिए सबसे पहले तो मैं एक आपके तवज्जो से ट्रिब्यूट पेश करना चाहूंगी कायम अली शाह साहब को कि वो एक बहुत अजीम पॉलिटिशियन है और वो एक बड़ी रेयर स्पीशीज ऑफ पॉलिटिशियन से है जिन्होंने इस मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और अगर देखा जाए तो एज सच उनकी अपनी भी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता और ना आया है।
सही।
अब ऐसा है कि कुछ मीडिया के अंदर ऐसे परसेप्शन क्रिएट किए गए और वो इस तरीके से जो उनकी वो तजवीज जिस तरीके से की गई, उनको जिस तरीके से हर बात में जो है खसीटा गया और जिस तरीके से, तो हमने बेहतर पार्टी ने समझा कि शायद जो पब्लिक परसेप्शन बना दी गई हैं, एक्चुअल में वो चीजें नहीं थी जो बनाई गई। तो मुराद अली शाह साहब भी बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े हमारे पढ़े लिखे,
फ्री हैंड कितना होगा उनके पास पॉलिटिकली,
तो हमने कहा कि चले एक पब्लिक परसेप्शन भी और अगर हो सकता है जिससे कोई बेहतरी आ जाए तो हम उनको ले आएंगे।
लेकिन डिलीवरेंस में, गवर्नेंस में उनके पास कितना, वो कितना फ्री हैंड एंजॉय कर रहे होंगे?
बिल्कुल जी, देखिए फ्री हैंड की तो बात है कि जमहूरी अमल है, अपनी काबीना को साथ लेके चलेंगे और कैप्टन एक ही होता है, लेकिन खिलाड़ियों की भी इनपुट होती है। इंशाल्लाह ताला अच्छी टीम है उनके पास और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर रूबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मेंबर सेनेट, आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर हाशिम खाकवानी साहब, आपके भी हम मशहूर हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप हमारे साथ इन दोनों सेगमेंट में मौजूद रहे। सामिन, प्रोग्राम का हमारा लास्ट सेगमेंट, उस पर हम बात करने जा रही हैं। हमारे पास 6 से 7 मिनट हैं और ये प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से बराह रास्त सुन रही हैं। मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर हैं गुलरुख, और प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत क्वेटा, उसको ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए सेफ सिटी मनसूबा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, उस पर काम हो रहा है, कई सिक्योरिटी कैमराज नस्ब किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिसका ताल्लुक जो है दाखिली और खारजी रास्तों को मजीद सिक्योर करने से मुतालिक है। ये वो शहर और ये वो सूबा है जिसको मिलिटेंसी का गाहे गाहे सामना रहता है, बड़े सिक्योरिटी अटैक्स जो हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं और उसकी मुख्तलिफ जहतें हैं यहाँ पर पैदा होने वाली अस्करियत पसंदी की। इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बलोचिस्तान के सरफराज बुगटी साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया आपका सरफराज बुगटी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
बहुत शुक्रिया सुल्तान।
फरमाइएगा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसकी कुछ तफसीलात दीजिएगा, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और क्या इनिशिएटिव्स आपकी फहरिस्त में बिल्कुल तरजीहात पे हैं, आप कैसे सिक्योर करना चाहते हैं इस शहर को खास तौर पे?
देखिए, जब जब लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, ऐसे में अब क्योंकि दुनिया बहुत आगे चल गई है और टेक्नोलॉजी के बगैर ये जो हमारे यहाँ इंसर्जेंसी है, हिट एंड रन वाली जो पॉलिसी है, जो बुजदिलाना हमले हैं, इनको रोकना जाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। और उसी चीज को सामने रखते हुए हमने क्वेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और गवादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह ताला हुकूमत बलूचिस्तान इसको डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे भी लेके जाएगी एंड सो टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। क्वेटा में आपको पता है कि क्वेटा एक थिकली पॉपुलेटेड शहर है और उसमें जो गलियां हैं और वो इस तरह वेल प्लान सिटी भी नहीं है, तो उसमें हमने कोई 200+, 300+ पॉइंट्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर सर्विस टीम आई है और वो वहां पर सीसीटीवी कैमराज लगाएंगे और कंट्रोल रूम। इस वक्त भी आपको पता है कि 20% कोटा जो है वो ऑलरेडी हम सिक्योर कर चुके हैं विद सीसीटीवी कैमराज।
सही। अच्छा, ये बताइएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूबे में जाहिर अस्करियत पसंदी या जो चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, सेक्टेरियन वायलेंस भी हमें नज़र आता है, वो जो टिपिकल तालिबान इंसर्जेंसी है उसका भी रंग है, उसके अलावा हमें रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स वो भी नज़र आते हैं, सबसे बड़ा खतरा किस नौयत की इंसर्जेंसी से है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देयर इज नो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, वो तो और बात है। और मैं समझता हूं कि सेक्रेटेरियन वायलेंस की बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है, वो एक उस वक्त होती है जब दोनों तरफ से दो सेक्ट के लोग आपस में कत्लो गारत करें, तो उसको सेक्टेरियन वायलेंस हम कहते हैं।
सही।
ये सिंपल दहशतगर्दी है, खासतौर पर हमारी हुकूमत संभालने से पहले हजारा बरादरी को जिस तरह टारगेट किया जा रहा था और हमारे शिया भाइयों को जिस तरह कत्ल किया जा रहा था, मैसिव किलिंग थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत हद तक रुक गया है। तो बेसिकली हमें जो आपका सवाल है, मैं उस पर आ जाता हूँ कि हमें जो चैलेंजेस हैं, तीन किस्म के चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज हमें है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, जिसको मैं कभी चैलेंज नहीं समझता हूँ, ये तो हमारी जो अपनी पुलिस है या लेवी
वही कंट्रोल कर सकती है।
आपको पता है कि जिस तरह हाईवे रॉबीज ऑलमोस्ट खत्म होने को है, कि नैबक फॉर रैंसम के गो के बहुत बड़ा केस हुआ है, हमारे एक मैसेज साहब के बेटे जो है वो किडनैप हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तवातर के साथ बलूचिस्तान में ये वाकयात हो रहे थे वो कम हो गए। और फिर एक बलोच इंसर्जेंसी है जिसको आपके यहाँ नाराज बलोच कहा जाता है और हम उनको दहशतगर्द कहते हैं, तो एक वो है, उनकी भी कमर टूट चुकी है और वो भी अब बहुत जोक दर जोक सरेंडर भी हो रहे हैं और उनको भी पता चल गया है, कभी उनको इस नाम पे वर्गलाया जाता रहा कि बस मुजाकरात हो रहे हैं, कल हुकूमत से हो रहे हैं, बस थोड़ा सा और लड़ लो, कभी ऐसे कि इंकलाब चिल्तन के पहाड़ के पीछे है, बलूचिस्तान आजाद होने वाला है, तो वो ये सब वो मफरूजे थे जिनकी वजह से वो लोग लड़ रहे थे। और आज रियलाइज हो रहा है उनको कि उनके जो आका हैं, जो बड़े हैं, अपने आप को सरदार कहते हैं, अपने आप को सरबराह कहते हैं, खुद तो वहाँ यूरोप में और दुबई में लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, खुद भी बेहतरीन जगहों पर उनका इलाज हो रहा है, आम बलोच को पहाड़ों पर छोड़ा हुआ है कि वो बलोच से भी लड़े, वो पश्तून से भी लड़े।
ये हमने देखा कि वो लोग वापस आए, कुछ लोगों ने डिस्करेज किया, लेकिन उस लीडर जिस लीडरशिप का आप तज़किरा कर रहे हैं उनके साथ एंगेजमेंट कितनी है?
दोबारा फरमाइएगा।
जिस लीडरशिप का आप तज़किरा कर रहे हैं उनके साथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट कितनी है आपकी?
जी मैं उस सवाल का आपका
जवाब
कर लूँ पहले वाले का, फिर मैं इस पे आता हूँ। जो थ्रेट है हमें सबसे ज्यादा, मैं मुख्तसर ये कह दूँ कि इनसे भी नहीं है, हमें थ्रेट है जो सबसे ज्यादा है वो तालिबानाइजेशन से है, वो जो एक्सट्रीमिस्ट है जो मदद के नाम पे वायलेंस करता है।
20 सेकंड हमारे पास जी,
जो सामने मौजूद है जी। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि उनके साथ पोलिटिकल एंगेजमेंट, जी देखिए ये पोलिटिकल डायलॉग का नतीजा है कि जो सेकेंड टीयर लीडरशिप है इंफरालियों की, वो वापस आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं, बावजूद इसके कि वो हमारे कातिल हैं, हमारे मासूम लोगों को मारा हुआ है, नेशनल एसेट्स को निशाना बनाया हुआ है, फिर भी हम उनको वेलकम कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया आपका सरफराज बख्शी साहब, होम मिनिस्टर बलूचिस्तान, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोड्यूसर गुलरुख और असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।